चौदवां बाब, जिल्दी बीमारियों के बाद पाक ठहराया जाना। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि कोढ़ी के लिए जिस दिन वो पाक करार दिया जाए, ये शरा है कि उसे काहिन के पास ले जाएं, और काहिन लश्करगाह के बाहर जाए, और काहिन खुद कोढ़ी को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि उसका कोढ़ अच्छा हो गया है, तो काहिन हुक्म दे कि वो जो पाक करार दिया जाने को है, उसके लिए दो जिंदा पाक परिंदे और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़ा और जूफा लें, और काहिन हुक्म दे कि उनमें से एक परिंदा किसी मिट्टी के बर्तन में बहते हुए पानी के ऊपर ज़िबह किया जाए। फिर वो जिंदा परिंदे को और देवदार की लकड़ी और सुर्ख कपड़े और जूफे को ले, और इनको और उस जिंदा परिंदे को उस परिंदे के खून में गोता दे जो बहते पानी पर ज़िबह हो चुका है, और उस शख्स पर जो कोढ़ से पाक करार दिया जाने को है, सात बार छिड़क कर उसे पाक करार दे, और जिंदा परिंदे को खुले मैदान में छोड़ दे, और वो जो पाक करार दिया जाएगा अपने कपड़े धोए और सारे बाल मुड़ाए और पानी में गुस्ल करे, तब वो पाक ठहरेगा। इसके बाद वो लश्करगाह में आए, पर सात दिन तक अपने खैमे के बाहर ही रहे, और सातवें रोज अपने सर के सब बाल और अपनी दाढ़ी और अपने अबरू गरज अपने सारे बाल मुड़ाए और अपने कपड़े धोए और पानी में नहाए, तब वो पाक ठहरेगा। और वो आठवें दिन दो बेऐब नर बर्रे और एक बेऐब यक साला मादा बर्रा और नजर की कुर्बानी के लिए ऐफा के तीन दिहाई हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल ले, तब वो काहिन जो उसे पाक करार देगा उस शख्स को जो पाक करार दिया जाएगा और इन चीजों को खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तमा के दरवाजे पर हाजिर करे, और काहिन नर बर्रों में से एक को लेकर जुर्म की कुर्बानी के लिए उसे और उस लोज भर तेल को नजदीक लाए और उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर हिलाए, और उस बर्रे को मकदिस में उस जगह ज़िबह करे जहां खता की कुर्बानी और सोख्तनी कुर्बानी के जानवर ज़िबह किए जाते हैं, क्योंकि जुर्म की कुर्बानी खता की कुर्बानी की तरह काहिन का हिस्सा ठहरेगी, वो नहायत मुकद्दस है। और काहिन जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे पर और दहने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए, और काहिन उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले, और काहिन अपनी दाहिनी उंगली को अपने बाएं हाथ के तेल में डुबोए और खुदावंद के हजूर कुछ तेल सात बार अपनी उंगली से छिड़के, और काहिन अपने हाथ के बाकी तेल में से कुछ ले, और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून के ऊपर लगाए, और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे उसे वो उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा, यूं काहिन उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दे। और काहिन खता की कुर्बानी भी गुजराने और उसके लिए जो अपनी नापाकी से पाक करार दिया जाएगा कफारा दे। इसके बाद वो सोख्तनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करे। फिर काहिन सोख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी को मज़बह पर चढ़ाए, यूं काहिन उसके लिए कफारा दे, तो वो पाक ठहरेगा। और अगर वो गरीब हो और इतना उसे मकदूर ना हो, तो वो हिलाने के वास्ते जुर्म की कुर्बानी के लिए एक नर बर्रा ले, ताकि उसके लिए कफारा दिया जाए, और नजर की कुर्बानी के लिए ऐफा के दसवें हिस्से के बराबर तेल मिला हुआ मैदा और लोज भर तेल और अपने मकदूर के मुताबिक दो कुमरियां या कबूतर के दो बच्चे भी ले, जिनमें से एक तो खता की कुर्बानी के लिए और दूसरा सोख्तनी कुर्बानी के लिए हो, इन्हें वो आठवें दिन अपने पाक करार दिए जाने के लिए काहिन के पास खैमा इज्तमा के दरवाजे पर खुदावंद के हजूर लाए और काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रे को और उस लोज भर तेल को लेकर उनको खुदावंद के हजूर हिलाने की कुर्बानी के तौर पर हिलाए। फिर काहिन जुर्म की कुर्बानी के बर्रे को ज़िबह करे और वो जुर्म की कुर्बानी का कुछ खून लेकर जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर उसे लगाए। फिर काहिन उस तेल में से कुछ अपने बाएं हाथ की हथेली में डाले और वो अपने बाएं हाथ के तेल में से कुछ अपनी दहनी उंगली से खुदावंद के हजूर सात बार छिड़के। फिर काहिन कुछ अपने हाथ के तेल में से ले और जो शख्स पाक करार दिया जाएगा उसके दहने कान की लौ पर और उसके दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर जुर्म की कुर्बानी के खून की जगह उसे लगाए और जो तेल काहिन के हाथ में बाकी बचे वो उसे उस शख्स के सर में डाल दे जो पाक करार दिया जाएगा ताकि उसके लिए खुदावंद के हजूर कफारा दिया जाए। फिर वो कुमरियों या कबूतर के बच्चों में से जिन्हें वो ला सका हो एक को चढ़ाए, यानी जो कुछ उसे मुयस्सर हुआ हो उसमें से एक को खता की कुर्बानी के तौर पर और दूसरे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर नजर की कुर्बानी के साथ गुजराने। यूं काहिन उस शख्स के लिए जो पाक करार दिया जाएगा खुदावंद के हजूर कफारा दे। उस कोढ़ी के लिए जो अपने पाक करार दिए जाने के सामान को लाने का मकदूर ना रखता हो शरा ये है। मकानों और घरों के अंदर फफूंदी।
फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्के केनान में जिसे मैं तुम्हारी मिल्कियत किए देता हूँ दाखिल हो और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर कि उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से बाहर निकलकर घर के दरवाजे पर जाए और घर को सात दिन के लिए बंद कर दे और वो सातवें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए तो काहिन हुक्म दे कि उन पत्थरों को जिनमें वो बला है निकालकर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डाले और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाए और काहिन ताजा गारे से उस घर की अस्तरकारी कराए और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और अस्तरकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे और वो उनको शहर के बाहर निकालकर किसी नापाक जगह में ले जाए। मां सिवा इसके अगर कोई उस घर के बंद कर दिए जाने के दिनों में उसके अंदर दाखिल हो तो वो शाम तक नापाक रहेगा और जो कोई उस घर में सोए वो अपने कपड़े धो डाले और जो कोई उस घर में कुछ खाए وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے، اور اگر کاہن اندر جا کر ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ گھر کی استرکاری کے بعد وہ بلا اس گھر میں نہیں پھیلی، تو وہ اس گھر کو پاک قرار دے، کیونکہ وہ بلا دور ہو گئی۔ اور وہ اس گھر کو پاک قرار دینے کے لیے دو پرندے اور دیودار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لے، اور وہ ان پرندوں میں سے ایک کو مٹی کے کسی برتن میں بہتے ہوئے پانی پر ذبح کرے۔ پھر وہ دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑے اور اس زندہ پرندے کو لے کر ان کو اس ذبح کیے ہوئے پرندے کے خون میں اور اس بہتے ہوئے پانی میں غوطہ دے، اور سات بار اس گھر پر چھڑکے، اور وہ اس پرندے کے خون سے اور بہتے ہوئے پانی اور زندہ پرندے اور دیودار کی لکڑی اور زوفے اور سرخ کپڑے سے اس گھر کو پاک کرے، اور اس زندہ پرندے کو شہر کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دے، یوں وہ گھر کے لیے کفارہ دے، تو وہ پاک ٹھہرے گا۔ کوڑ کی ہر قسم کی بلا کے اور صافا کے لیے اور کپڑے اور گھر کے کوڑ کے لیے اور فرم اور پپڑی اور چمکتے ہوئے داغ کے لیے شرع یہ ہے، تاکہ بتایا جائے کہ کب وہ ناپاک اور کب پاک قرار دیے جائیں۔ کوڑ کے لیے شرع یہی ہے۔